Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ke tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karikram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन राय. उदयन नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद मनोज.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया.
लेट्स टेक यू थ्रू द हेडलाइंस फर्स्ट दिस इवनिंग. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रैप अप वीक ऑन स्ट्रॉन्ग नोट. सेंसेक्स गेन्स नियरली 500 पॉइंट्स. निफ्टी रीचेस 52 वीक हाई ऑफ 25,700. India today negotiates trade agreements from a position of strength, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, and global crude oil prices rise.
घरेलू शेयर बाजार इस कारोबारी सप्ताह में मजबूती के संकेतों के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 500 के आसपास बढ़ा. निफ्टी 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 25,700 से ऊपर पहुंचा. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मजबूत स्थिति के साथ अब कारोबार समझौते पर भारत बातचीत कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी.
We'd like our listeners to note that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
आइए अब शुरू करें खबरों का सिलसिला. सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार. घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में आज भी खरीदारी की गई. प्रमुख सूचकांक 0.5% बढ़त के साथ बंद हुए. यह सप्ताह कमजोर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में बुधवार से खरीदारी का सिलसिला शुरू हुआ और आज तक लगातार तीन दिन में ऊपर ही जाता रहा सारे बाजार प्रमुख सूचकांक. आज अंतिम दिवस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 485 अंक बढ़कर 83,952 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान जून 2025 के बाद पहली बार सेंसेक्स 84,000 के स्तर से ऊपर भी उठा, हालांकि यह तेजी आखिरकार रह नहीं पाई. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 125 अंक बढ़त के साथ 25,710 दर्ज हुआ, जो लगभग 52 सप्ताहों का उच्चतम स्तर है.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस सेंसेक्स एंड निफ्टी extended their impressive run and rose around 0.5% today. The markets rebounded after a weak start and stayed in the positive zone for the third straight session. The Sensex gained 485 points to close at 83,952. It had crossed the 84,000 level during the intraday trade for the first time since June 2025. Similarly, Nifty advanced 125 points to settle at 25,710, surpassing the 25,700 mark for the first time this year. However, the broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed with cuts. The mid-cap index dropped over 0.4% and the small-cap index slipped 0.5%.
नजर डालें सेंसेक्स पैक पर, तो 30 में से 16 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए. सबसे अधिक लाभ कमाने वालों में एशियन पेंट्स के शेयर 4.2% ऊपर उठकर बंद हुए. महिंद्रा एंड महिंद्रा को 4.2% का मुनाफा हुआ. भारतीय एयरटेल के शेयर लगभग 2.3% लाभ के साथ बंद हुए हैं. और यदि हम घाटा उठाने वाली कंपनियों को देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को 4.2% का लाभ हुआ है. भारतीय एयरटेल को 2.3% का लाभ हुआ है. और घाटा उठाने वालों में इन्फोसिस के शेयर प्रमुख रहे, जिनको 2.1% का नुकसान हुआ है. एचसीएल टेक के शेयर 1.8% से अधिक घाटे में रहे. एटर्नल को 1.6% से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा।
And among the sectoral indices at the BSE, 11 out of 21 sectors ended in negative territory. In the top laggards, focused IT declined 1.7%, IT dropped 1.6% and metal fell around 0.9%. Among the top gainers, consumer durables advanced 1.5%, FMCG rose 1.2% and auto added 0.6%. Udayan, I'd like your views here. So the Nifty touched its one-year high mark today, and Sensex was also, you know, roughly, if we compare it with the past 4 to 5 months, was at a high today. However, as we'll shortly get to know, the Asian markets were mostly down. US ended red today. Global cues are not in favor, but the domestic markets seem to be doing pretty well, if I can put it that way. What could be the reason? Are there other quarterly earnings that could possibly be behind this, climbing up of the markets?
Well, one of the reasons possibly could be foreign institutional investors, FPIs, they are buying now, and they have bought significant amounts, although the domestic institutions, they are buying more. While the earnings results of the companies have not set the rivers on fire, shall I put, if I'm allowed to put. But there is a certain level of optimism simply because in certain sectors. So because of the GST cut, there is a sense of optimism in certain sectors which are likely to benefit, that there is going to be a kind of a bump in their financials. So that's another one. And then there's this overall sentiment or expectation that the Federal Reserve in the US, it's going to do a little bit of rate cutting. It is expected that there will be at least one more rate cut. So if all that put together, and sometimes it's also kind of money keeps moving among markets. So when global investors, they see that a particular market has got beaten down a little bit, then that's when they come and enter. So all these things together, I would say that they have helped basically our markets. Also, this may not directly impact, but sometimes they help sentiments. So there are reports that the RBI has been shoring up the rupee.
Right.
So that also helps. If the government or the administration of the day or an institution as big as RBI is coming and intervening, it sends signals that, the government is feeling confident about certain things. So, or the administration is feeling confident about certain things. So all this together probably is what you're seeing.
In fact, that could be, I think, like a silent catalyst that is only propelling the markets forward.
Yeah, yeah.
And in fact, if we even look at Bank Nifty today, so it touched an all-time high in intraday trade. It touched around 57,823. Now, if you compare it to March, this is like a 10,000 point jump. So could the regulatory support be one of the reasons for this?
Yeah, some of the recent announcements of what banks can do. For instance, they can get into M&A, mergers and acquisition. These are very, this shows that the RBI is feeling confident or it wants to boost these activities. So M&A activity is, you basically will get some fees and other things. But it's showing that, the administration, shall I say, especially the monetary authorities feeling confident that the banks can do this.
Absolutely.
Now, this is an interesting contrast. You see, you'll obviously be reading those headlines. Now, what's happening in US and in terms of the smaller banks? So it's very different. Out there, you'll see different kind of announcements coming in the next couple of days, because there is a after the Silicon Valley bank episode 2 years back, this is again, there's a rerun happening out there.
Correct.
So it's a question of how confident you're feeling or what you want to do. You know that, okay, I'm going to take this step and I'm okay with whatever, the I've taken care of the downside. So all this is happening. The other last bit is that in the markets, if you see, some of the buying that has happened in very large counters, large stocks.
Correct.
Okay,
yeah.
Say maybe a Reliance and, you know, stuff like that. And also maybe the, you know, when you get the data, I'm sure you'll see a lot of buying in the large banks, etc. So all this has again boosted up at least the index.
Mm-hmm.
So, and also you're talking about the bank. Probably it had gone run ahead of itself. Then there was some correction. Now it's gone back.
श्रोताओं यहां हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम. विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र. बने रहिए हमारे साथ. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में. उदयन, बाजार की गतिविधि पर हम आपका ध्यान एक बार फिर आकृष्ट करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे ऑटो सेक्टर पर. त्योहारों के दौरान हमने अच्छी खासी खरीदारी देखी है, तो ये खरीदारी तात्कालिक है या दीर्घकालीन आप देख रहे हैं, खासतौर से महिंद्रा एंड महिंद्रा को आज देखते हुए जिसके शेयर आज 2.4% लाभ में रहे हैं. कुल मिलाकर ऑटो सेक्टर क्या संकेत दे रहा है?
देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. जो छोटी गाड़ियां हैं
जी,
वहां पे एक हमारे जो एक टू व्हीलर पॉपुलेशन है वहां पे एक माइग्रेशन की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो जो एक चेंज करना चाहते हैं कई बार लोग टू व्हीलर से छोटी गाड़ी में, वो उसकी खबरें आ रही हैं. शायद वो आंकड़ों में आके वो रिफ्लेक्ट करेंगी. कई बार क्या होता है, गाड़ियों में रिप्लेसमेंट डिमांड भी होता है कि आप छोटी गाड़ी हैं तो एक एसयूवी टाइप की गाड़ी में एक चले गए, बीच में रिप्लेसमेंट डिमांड बोला जाता है, तो शायद वो वहां पे ये भी दिख रहा होगा. कई बार क्या होता है मनोज जी कि आपके नए मॉडल्स जो लॉन्च होते हैं वो एक्साइटमेंट जनरेट करते हैं, सेल्स को बूस्ट करते हैं, इसलिए आप देखेंगे नए मॉडल्स काफी रिस्पांस जनरेट करते हैं हमारे इंडियन मार्केट में. तो इन सब चीजों का आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो रहा है. पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक सेक्टर, जैसे मैंने कहा जीएसटी, यहाँ पे वो छोटी गाड़ियों में वहां के वहां से जुड़ी हुई जो बातें आ रही हैं स्मॉल कार सेल्स के बारे में, वो काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, शायद वो फिगर्स भी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे.
आइए नजर डालें रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 15 पैसे घटा 87.97 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती नापने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 98.32 पर चल रहा था. बहुत संक्षिप्त सी प्रतिक्रिया रुपए की स्थिति पर समझना चाहेंगे. पिछले कुछ सत्रों में हमने रुपए में अच्छी खासी तेजी देखी, हालांकि आज 15 पैसे घटा है, लेकिन रुपया क्या संकेत दे रहा?
देखिए, कई बार जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं स्टॉक मार्केट्स में, मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट में, तब एक इनफ्लो के वजह से हेल्प हो जाता है. इसका दूसरा है कि तेल के, कच्चे तेल के दाम के ऊपर कैसे ऑयल प्राइसेस मूव कर रही हैं, तो इनके इनसे जुड़ी हुई बातें हैं. प्लस आरबीआई जो है, जैसे कि रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट दिया है. तो इन ये कुछ चीज़ें जो है पीछे की जो ट्रेजेक्ट्री है वो उसमें आप देख पा रहे होंगे,
यानी ये कारक हैं रुपए में मजबूती आने के. बहरहाल श्रोताओं यहां पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम. विराम के बाद हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र. बने रहिए हमारे साथ.
वेलकम बैक, यू ट्यून्ड इनटू मार्केट मंत्रा एंड इट्स नाउ टाइम वी टेक अ लुक एट द एशियन एंड यूरोपियन मार्केट्स.
वैश्विक बाजारों में सबसे पहले हम एशिया पर ध्यान दें तो आज बिकवाली ही दिखी है. बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हैंगसेंग 2.5% लुढ़क गया. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.9% की गिरावट हुई. जापान का निक्केई 225 सूचकांक लगभग 1.4% से अधिक घाटे के साथ बंद हुआ है. सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% से अधिक नीचे आ गया. दक्षिण कोरिया पर ध्यान दें तो वहां बंद सूचकांक अपने पूर्व स्तर पर कोसपी हुआ है, लेकिन मामूली बढ़त भी दिखी है. यूरोपीय जोन की ओर चलें तो वहां भी गिरावट का ही रुख था समाचार तैयार किए जाने तक. अंतरदिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 1.5% घाटे के साथ चल रहा था. लंदन के फुटसी 100 में लगभग 1% की गिरावट दिख रही थी. उधर फ्रांस का कैक 40 बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास चलता नजर आ रहा था.
And as for the US markets, major US indices closed in negative zone yesterday as signs of weakness in regional banks dampened investor sentiment. The Dow Jones Industrial Average as well as S&P 500 ended over 0.6% down and the tech-heavy Nasdaq Composite Index dipped around 0.5%. Meanwhile, investors are also watching for developments between Washington and Beijing after their trade war escalated last week. In very brief, Udin, is there a light at the end of the tunnel? We've been hearing this news for quite a while now, but what are your thoughts on this?
Well, eventually, these discussions will happen. They do happen because the two economies are so intertwined. A lot of people might not be aware that China has is one of the largest investors in U.S. government securities. Even India is. So these are very important linkages are there.
Right.
So there's a lot of investments across countries.
Mm-hmm.
So, these things, one is the rhetoric. The other is practicalities of business relationships. Eventually, markets and business influences, they bring people to the table.
Right.
And you end up coming up with some kind of agreement. You both sides may not like, but agreements are like that.
There has to be some kind of a compromise.
उदिन, यहाँ पर यदि हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहें, एक ओर कल हुई अमेरिका में गिरावट पर, दूसरी ओर आज एशिया में हुई गिरावट पर, तीसरी ओर यूरोप के बाजार भी प्रमुख घाटे के साथ चलते नजर आ रहे हैं, जबकि अपना बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ है, कारोबारी सप्ताह कुल मिलाकर बढ़त में रहा है. क्या हम माने कि भारतीय शेयर बाजार अब अपने बूते खड़ा रहने की हिम्मत देख पा रहा है, कर पा रहा है?
देखिए, ये तो पहले भी दिख गया है, क्योंकि अगर ये कहने वाली बात नहीं है, ये प्रूफ, मतलब ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है. जो भारतीय निवेशक है, छोटे निवेशक, जो SIP, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, आप प्रोविडेंट फंड की जो इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में, ये अगर नहीं होते, जिस दर्जे के हो रहे हैं, तो आप मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन देखते हैं. तो क्योंकि वो फ्लोज जाके काउंटर एक्ट कर रहे हैं, जो बाहर के विदेशी निवेशक जो हैं बड़े, उनके मूड के स्विंग्स के ऊपर मार्केट हमारे डिपेंडेंट नहीं, रेजिलिएंट है. तो जब उनकी पार्टिसिपेशन हो जाती तो वो
रॉकेट की गति से भागता है.
तो आप आज के जैसा रिजल्ट देखते हैं
जी, जी.
तो वो रेजिलियंस दिख रहा है और दिखता चला जा रहा है और वो होल्ड कर रहा है. पहले क्या होता था मनोज जी, कि जब मार्केट्स अच्छी करती थी तो रिटेल छोटे निवेशक घुसते थे, फिर विड्रॉ कर जाते थे. अब क्या हो रहा है, ये हैबिट बन गई है, जो कि एक स्ट्रेंथ दिखा रही है. तो इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि ये 20-25 साल पहले जो भारत था और अब में बहुत फर्क आ गया है.
श्रोताओं, ये मार्क करने वाली बात है, उल्लेख करने वाली बात है कि अपनी अर्थव्यवस्था, हम आप जैसे छोटे निवेशकों के बूते शेयर बाजार को बदलने की हैसियत रख रही है, हमारे कह रहे हैं विशेषज्ञ. यानी हम आत्मनिर्भर अपने शेयर बाजार को अपने बूते करने में समर्थ होते दिख रहे हैं. बस यहीं पर श्रोताओं, हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम. विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र. बने रहिए हमारे साथ.
Welcome back. You're tuned into Market Mantra, and with that, let's take you towards the next story for this evening. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today highlighted that India has undergone a significant shift in recent years, and now it negotiates from a position of strength, reflecting the country's growing economic confidence and global stature. Addressing the annual conference and 105th annual general meeting of ASSOCHAM in New Delhi, Mr. Goyal said that the world today recognizes India as an important trading partner and a trusted country to work with.
There's a new dynamism, a new enthusiasm that was not witnessed until a few years ago. Gone are the days when India would negotiate from a position of weakness. Gone are the days where we would land up doing imbalanced free trade agreements. And I think all in all, if one was to reflect on the way the Indian economy has systematically been prepared to address future challenges, it clearly demonstrates vision, it demonstrates clarity of understanding, particularly of economics, shows a huge commitment to the nation.
The minister mentioned that the free trade agreements signed with Mauritius, Australia, the United Arab Emirates and the European Free Trade Association countries mark a new chapter in India's trade engagement with the world. Earlier, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari has said that India's logistics cost will come down from 16% of the nation's GDP to single digit by the end of the year. Addressing the ASSOCHAM annual conference in New Delhi today, he highlighted that increasing exports is the most important agenda for the country, which can only be achieved by reducing logistics cost, improving transportation facilities, and boosting indigenous production. Udayan, I'd like your views here. Exports seem to be the priority at the moment, and especially, you know, when it comes to software, we seem to be doing pretty well, software as a service. Going forward, how do you see ourselves aligning with the world demand in terms of softwares? And also, rare earth seems to be an area where we really need to pick on the opportunities that are coming our way.
So let me start with the last point. Mm-hmm. So a rare earth kind of thrust in the rare earth area will take a very long period of time. So it's got its own economics. Finding it, mining it takes a long time. But you need to start at some point, and today is never too late. It should have started yesterday, but it's fine. Right. So that's number one. In terms of service, yes, with the kind of profile that we have, perhaps services are services exports are the first port of call, shall I say, where you are going to see keep seeing more and more growth. But what is very interesting, that's worth pointing out, that from low value added or low value service exports, like a call center, you know, mm-hmm. Like a, you know, customer support, which is getting increasingly getting replaced by artificial intelligence, AI bots and other Correct. Things. So from there, we are going to get into higher value added, whether it's going to be skill, there's going to be troubleshooting, all kinds of things, global capability centers. So all these things, you're going to find higher value added services happening. Even the manufacturing that we are talking about will eventually, you'll find that India is going to keep trying to get into higher value added manufacturing, because when you're competing on price, mm-hmm. That's when even 10%, 15% tariff. So this is going to be a very big lesson. To 2025 is going to change our the mix of our export, the products basket, the items, and also the destination. So you will find that we are going to get into higher value added, and we're going to also get into you know, all kinds of destinations. So the concentration is going to go down. The top 10, we are not going to concentrate on top 10, maybe top 25.
I think exports as we know it are going to change
exactly,
completely,
exactly,
right?
Exactly.
Right. And with that, let's move to the next story.
श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. श्री मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि उनकी यात्रा से भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक और बहुपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे. दोनों नेताओं ने शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, विकास सहयोग और मछुआरों के कल्याण सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को रेखांकित करते हुए दोनों देशों की साझा विकास यात्रा में साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की. दूसरी ओर मिस्र के विदेश मंत्री डॉ बद्र अब्देलती ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. मिस्र के विदेश मंत्री श्री अब्देलती ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी यात्रा के दौरान संपन्न पहले भारत मिस्र स्ट्रेटेजिक डायलॉग का जिक्र किया. प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया.
And with that, let's also take a look at crude oil. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.2% up at $61.17 per barrel. And WTI crude was trading over 0.3% up at $57.63 per barrel when reports last came in. Meanwhile, the Energy Information Administration data reflected that U.S. crude inventories increased by 3.5 million barrels to 423.8 million barrels. Last week. As for the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading 0.4% up at 1,30,830 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.3% down at 1,67,300 rupees per kilogram a short while ago.
चले एमसीएक्स. वहां दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% से अधिक बढ़कर 1,30,063 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं चांदी दिसंबर आपूर्ति वाली घाटे के साथ 1,64,770 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी.
एंड
पहले धन्यवाद हम देना चाहेंगे उदयन को, बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं की ओर से उदयन आपका.
एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. Benchmark domestic indices wrap up week on strong note. Sensex gains nearly 500 points. Nifty reaches 52-week high of 25,710. India Today negotiates trade agreements from a position of strength, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. And global crude oil prices rise. With that, it's a wrap on today's episode of Market Mantra. For now, goodbye. See you soon in the next one.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.